जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले,
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले।
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
गुरु राखहिं जो कोप विधाता, वचन प्रतीतन जाई,
गुरु के वचन प्रतीतन जाई।
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई,
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई।
ओम जय गुरुदेव जय गुरु।
बारहमासी काशी प्रयाग के बीच स्थित श्री परमहंस आश्रम जगदानंद की जनसभा में दिनांक 10 दिसंबर 1994 को संकलित किया था।
गुरु महाराज जब आस्ते आस्ते सती अनुसुई आश्रम में पहुंच गए तो वहां पर उनको अनुभव में सारी स्थितियां मिल गई। एक दिन बोले कि भगवान ने कहा आज सुपन खां के नाक कान कट गए। एक दिन हुआ कि अब आज से भवबंधन से तुम्हारा छुटकारा हुआ है, और बड़ी लंबी रील भव क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसका विश्लेषण के साथ आया भजन में। आस्ते आस्ते एक बार निकला कि हम मर गए। महाराज को हुआ कि आखिर वो सहज स्वरूप समझ में नहीं आ रहा कैसा है, तो आया कि हम मर गए और हम ही फूंक रहे हैं गंगा किनारे। फूंक ताप के एकदम सब गंगा में बहा दिया और फिर पानी ले लेके गंगा जल से उस जगह की कालीमा तक धो के हमने एकदम साफ सुथरा कर दिया, सब बहा दिया। और इतना काम करने में परिश्रम में लथ पथ एकदम पसीने में और थक गए, और फिर खड़े होके कमर सीधी किया तो उसी गंगा में से एक दिव्य पुरुष निकला, वो हमारा ही स्वरूप है। तपाए हुए सोने की तरह दग दग चमकता हुआ निकला पूरा स्वरूप नीचे से ऊपर तक, बाल भी सोना, बरौनी सोना, सब कुछ सोना। और जहां निकल के हमारी तरफ आया तब आकाशवाणी हुई, यही तुम्हारा स्वरूप है, प्रणाम करो, है ना हिरण्यमय पुरुष, यही तुम्हारा स्वरूप है। मोरे स्वरूप के मैं ही प्रणाम किया हो, उस दिन से मोर चेहरा बदल गया। पहले करिया करिया ने जाने बनने कोनो लायक नहीं रहा कैसन रहे, अब तो मोर रूप वे बदल गया हो। और जहां स्थिति मिली तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारे दाहिने हाथ में ये गुण है, यदि छड़ी मार दोगे कल फांसी होना, आज छड़ी खा जाएगा तो फांसी नहीं होगी, सजा चाहे जो हो जाए। तुम्हारे बाएं हाथ में ई गुण है, सिर पे हाथ रखो दोगे तो सब कर्म हो जाएंगे। तुम यदि कोई दुखी आदमी को भला बुरा जदबद कह दोगे, गाली गुली दे दोगे तो उसका दुख मिट जाएगा। तुम्हारी विभूति में ये गुण है, इस तरीके से तुरे विभूति में ये गुण, तुरे वाणी में ये गुण, तुरे दाहिने हाथ में ये गुण, बाएं हाथ में ये गुण, इस प्रकार तीन चार अस्त्र भगवान पकड़ा दिए, इसलिए मैं गाली दिया करता हूँ कल्याण के लिए, नहीं तो हम लोगों को गाली कहाँ शोभाए, गाली देतन पावो शोभा, संतों के लिए कहाँ शोभा। लेकिन हमें आदेश है कि जिस कमी की पूर्ति के लिए आया है उसकी पूर्ति ही नहीं होगी यदि मैं दो चार खरी खोटी न कहूँ और गले के ऊपर ही भड़बड़ भड़बड़ कर रहा हूँ भीतर में एकदम शांत है, पता ही नहीं। महाराज क्या सिद्धि? कुछ नहीं। पहले सिद्ध हो जाए वो जिस परमात्मा की हमें चाहो स्वरूप प्राप्त हो जाए, ये सिद्धि परम सिद्धि। उसके साथ उसकी वाणी ही जो मन में इच्छा मन से कर लिया कोई सिद्ध हो जाती है, ये सिद्धि और कोई सिद्धि नहीं। प्रकृति अनादि। तो एक बार इस स्थिति प्राप्ति के पश्चात महाराज खड़े थे और उस वक्त सेवा में दो ही तीन साधक थे। एक तो धारकुंडी महाराज, भगवान आनंद जी महाराज भी थे, विचरण में थे अथवा वहां थे जा रहे हों। एक आध साधक और थे टेढ़ सोच। अनायास महाराज बोले, हो तीन दिन से लगातार आकाश गूंज रहा है और एक भजन आ रहा है लगातार, मैं बिल्कुल कबो हमने सुना नहीं है ये भजन, फिर भी आ रहा है। लेटे में, बैठे में, चलते में, जब खड़ा रहते हूं तब, ध्यान में रहता हूं तब सनासन आ रहा है। करे मैं भूल गई हूं, तुम लोग याद कर लो। तो जल्दी जल्दी महाराज जो दो तीन साधक थे उनको रटा दिया, बोली याद करो, ऐसे नहीं याद करो, आवत है रे आकाश बोले थे, रटा दिया। लोगों ने रट भी लिया और महाराज अपन छोड़ छाड़ते, वो महाराज का काम हो गया, भूल भाल गए। फिर महाराज के मुंह से बहुत कम निकले इस विषय की बात। हाँ कहा करें, हो आकाश बा बोले, रात दिन तीन दिन हमारा पिंड नहीं छोड़ा। तो लोगों ने याद किया और कोई कोई लोग कहा भी करें थोड़ा बहुत, कोई पहली लाइन, कोई आखिरी लाइन, कोई बीच की लाइन, हमने कोई महत्व नहीं दिया। हम बोले जब हमारी ब्रह्म विद्या है, महाराज ने ब्रह्म विद्या के लिए आदेश दिया है, इसके लिए तो कोई खास बात कही नहीं महाराज जी ने, और हमको महाराज ने रटाया नहीं था। जब महाराज का महाप्रयाण हो गया तब आस्ते आस्ते लोग भूलने लगे, तब हमको अपने आप मन में ही चिंता हो गई कि महाराज की विद्या लगता लोप हो जाएगी, कम से कम जीवनी तो इनको थोड़ी सी लिपिबद्ध कर दी जाए। तो जीवनी हमने महाराज से सुनी थी, लगातार कई वर्ष सुनी थी, इसलिए हमें कंठस्थ थी। जीवनी तो उतार ले गए, लेकिन अब रहाई बारामासी, महाराज की कृति क्या है? तो बोले एक बारामासी जो आकाश से उतरी, कलम तो महाराज जानते ही नहीं थे, और जिस वक्त उतरी थी उस वक्त आश्रम में कागज नहीं था, कलम नहीं थी, एक आध रामायण का गुटका यही सब था। तब हमने अब ढूंढना शुरू किया किसको याद है, किसको याद है। तो ढूंढा तो दो एक लाइन, दो एक मास किसी से, दो एक मास, दो तीन मास धारकुंडी महाराज से, ऐसे ऐसे सबसे पूछत पूछत, कुछ अनुसुईया महाराज से जोड़त 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 जोड़ ले गए। और जब देखा कि अब ये ठीक हो गई है तो उसको जीवना आदर्श में दे दिया। उसमें एक बारामासी एक चैप्टर है। बहुत से लेख ऐसे होते हैं उसका पहले सूक्ष्मीकरण पहले होता है, पहले कोई काम उद्योग होता है उसका छोटा सा मॉडल, पहले मॉडलिंग हो जाती है। रामचरितमानस में भी वही परंपरा है। संपूर्ण रामायण का सारांश है मनु शत्रुपा का विवरण। पहले वो राजा थे चक्रवर्ती, अनायास उनको गलानी हुई कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भजन बिनु, हो ही ने विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, और वो निकल पड़े। पहले गए नेमीसर, फिर मिले ऋषियों से, समझा साधन क्रम और एकांत शांत में भजन बैठ गए। बैठे तो उन्होंने विचार किया कि विष्णु वीरंची शंभु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना, ऐसे वो प्रभु सेवक बसे ही, वेद पुराण सुमृति अस कहें, जो ये वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजे ही अभिलाखा। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये भगवान जिनके मात्र अंश से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं, उपजे जासु अंश ते नाना, जिसकी कोई गणना नहीं, ऐसा भगवान सेवक के बस में है। यदि सुरति का ये वाक्य सच है तो मेरी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। और वो भजन में लग गए। जब भजन में लगे तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप पहुंचे बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मनु के पास बहुत बार पहुंचे। वर मांगो मांगहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। परम धैर्यशाली थे, विचलित नहीं हुए। जब नारद को डिगाना था तो देवराज इंद्र ने अप्सरा को भेज दिया, कामदेव को भेज दिया, विश्वामित्र के लिए भी अप्सराएं चली गई। लेकिन महाराजा मन ये देवता तो उनके सृष्टि के अंतर्गत थे, उनको भला कौन डिगावे। तो उनको डिगाने के लिए भी प्रयत्न हुआ तो हाई कमान को आना पड़ा। विधि हरि हर तप देखी अपरा, मानु समीप पहुंचे बहुबारा। मांगे वो बर बहु भांति लुभाए, कुछ दे नहीं रहे थे, परलोभन दे रहे थे। काम क्रोध मोह लोभ खड़ विकार हैं, उनमें से एक विकार को आगे बढ़ा रहे थे, क्या? लोभ। बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। बड़े परम धैर्यशाली थे, विचलित नहीं हुए। तब फिर भगवान ने देखा कि मन कर्म वचन से मेरा भक्त है, तो आकाशवाणी हुई। तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। यही आकाशवाणी मनु को हुई थी, यही आकाशवाणी महाराज के जीवन की घटना है। आकाशवाणी ने घर छुड़ाया, आकाशवाणी के से ही स्वरूप मिला। तो मृतक जियावनी मुर्दा जिलाने वाली नहीं, कि जितने बैठे हैं सब मृतक हैं। ये तो एक खोल है जो आज परिवर्तन है, कल हम कलेवर बदल देंगे। वाशांश जीर्णानी यथा विहाय, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हम नहीं। ये आत्मा जब तक ये मरण धर्म कलेवरों का भ्रमण कर रही है तब तक वो मृतक है, मौत पीछा कर रही है। इन मृतक को जीवन अविनाशी पद प्रदान कर देने वाली वाणी जब हृदय देश में गूंजी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, माने अभी भवन पे आए। अर्थात तपस्या का सारा दुख विस्मृत हो गया। भगवान ने कहा भाई कोई वर मांगो, सोचा शायद भक्त को कोई इच्छा हो, तो बोले नहीं प्रभु केवल आप चाहे। तो बोले हमारे जैसा कोई है ही नहीं, मैं एक हूं अकेला, तो मैं अपने जैसा कहां ढूंढूं, मैं ही मिलूंगा। इसी छोटा सा मॉडल है, इसी का प्रसारण है पूरी रामचरितमानस, जिसमें सात भूमिकाएं ही सात सोपान है। तेहिमा रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। इस सात कांड भगवान की भक्ति का पथ है, ये भक्ति पथ है, न कि केवल चैप्टर, ये मानस है। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज की बारामासी में आरंभ में छोटा सा उसका सूक्ष्मीकरण सूक्ष्म स्वरूप है कि मूलतः इस बारामासी में है क्या। तो भजन है, चहत चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान, चित के मिले न चौधरी भई चित में गलतान। तो चतुर ने क्या करी चतुराई, हमारा चित चेत चकोर किया। अपने चित चांदन चमकाई, चक चान अचानक चंद चढ़ा। चंदा की चमक चित पर छाई, चंदा चहु और चकोर चला। चित चेतन में गर्दी खाई, धरनी पर आया चमक में खोदई काया। चला गया चित चोर चतुर जब तक चलने नहीं पाया। लावणी सुन बार है मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी। सुन बार है मासी, चैत में चिंता यह कीजे कि ये तन घड़ी घड़ी चीजे, इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेक किया लीजे बात विचार, फिरे क्या मथुरा अवकाशी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी। सुन बार है मासी, बैसाख में वक्त तूने पाया, यहाँ कोई रहन नहीं आया, काल ने सब ही को खाया, कि ये सब झूठी है माया, भोग लोक पर लोक का सब ही त्यागे राग, रहे नैन की कामना, ताही कहे वैराग, तितिक्षा तोषों पर काशी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी। सुन बार है मासी, जेठ में जतन यही करना, जेठ में जतन यही करना, मिटे जैसे जन्म और मरना, मन इंद्रिय विषयों से परिहरना, कि लीजिए संतों का शरणा, श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागो, सहो मान अपमान, तितिक्षा तोषों पर काशी, कटे जासे जन्म मरण फांसी लावनी। सुन बार है मासी, अषाढ़ में सत संगति करना, वहां तू पावे सब मरमा, तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा, अषाढ़ में सत संगति करना, वहां तू पावे सब मरमा, तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा, परमानंद की प्राप्ति, अरुअनरथ का नाश, ये इच्छा मन में रहे कहे मुमुक्षातासु, हानि हो जिससे चौरासी, श्रावण में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धोपीना, साफ जब हो या तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना, तत्त्वमसी के अर्थ को तो य करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा, होए अभिद्यानाश, हानि हो जिससे चौरासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी। सुन बार है मासी, महीना भादों का आया भरम शब छीजे गुरु की भक्ति चित्त धार प्रेम रस पीजे ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजे इस मानस तन को पाय सुफल कर लीजे ब्रह्म बेता भक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान होवे अमरापुर को बासी कटे जासे जन्म मरण फांसी लावनी सुन बारह मासी क्वार में करना यही उपाय तत्वमसी श्रवणन मन लाए जुगत से मनन करो प्यारे खुले जासे अंदर के ताले निध्यासन के अंत में ऐसा होवे भान ब्रह्म आत्मा एक लख तब होय ब्रह्म का ज्ञान हो अमरापुर वासी कटे जासे जन्म मरण फांसी लावनी सुन बारह मासी कार्तिक में कर्म सभी नाशा ज्ञान जब युर में प्रकाशा तब अपना आप रूप भाषा उसी काल को तमाशा हर पार हमरो नहीं नहीं देश काल से अंत मैं ही अखंडित एक हूँ सब वस्तु का तंत मैं ही चेतन अविनाशी कटे जासे जन्म मरण फांसी लावनी सुन बार है मासी अगहन में ज्ञान अग्नि जागी लोग शब्दाहन कहाँ लागी फूंक दिए ब्रह्मा यरु विष्णु फूंक दिए ब्रह्मा यरु विष्णु दग्ध भय राम अरु किष्णु जलत जलत ये सी जली जाको आरन पार ईश्वर जीव ब्रह्म यरु माया फूंक दियो संसार बिनाई धन के प्रकाशी जब सब समाप्ति हो गया तब पोष में पूरन आपे आप तहां पर नहीं पुण्य अरु पाप कहो अब जपूं कौन का जाप मिटा सब जन्म मरण संताप ज्ञाता ज्ञान न गेय कछु ध्याता ध्यान न धेय मम निज शुद्ध स्वरूप में उपाधेय नहीं है करूं फिर किसकी तलाशी कटे जासे जन्म मरण फांसी लावनी सुन बार है मासी माघ में मिटी मिलन की भूख तहां पर नहीं आशिक माशूक इश्क फिर किसका होवे वृथा वक्त तू क्यों खोवे और व्यापक परमानंद में नहीं आशिक माशूक लक्ष्य रूप में मार निशाना क्यों व्रथा बिलोवे थूक करावे क्यों जग में हाँसी कटे जसे जन्म मरण फांसी लावनी सुन बारह मासी बसंत ऋतु फाल्गुन में आवे खेल यह प्रारब्ध रचवावे इत्र गुलाल ज्ञान रोरी खेलते भर भर के झोली होली अविद्या फूंक के हो गए गुप्तानंद समझे कोई सुगर विवेकी क्या समझे मतिमंत जगत की धूल उड़ी खासी कटे जसे जन्म मरण फांसी लावनी सुन बारह मासी। भजन तो काफी लंबा है लेकिन इसमें सारी सद्वाई की साधना चेतावनी प्राप्ति और स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण तक का पूरा विवरण है। ईश्वर पथ में सबसे बड़ी चीज है लावनी, लौ का लगाना। लावनी माने लाना है हमें, बस यही इसका सारांश है। जिन्होंने लौ लगाई वो कामयाब हो गए। तो प्रथम आरंभ है चैत चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान चित के मिले न चौधरी भाई चित में गलता तो मोह निशा सब सोवनी हारा जगत रूपी रात्रि में सब लोग अचेत सोए में रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते इनमें से कोई कोई जब चेत हो गया किसी को कोई जग गया है, तो चेता हुआ तब जानना चाहिए कि जब चेत चाहत चित चोर को वो चित चोर को चाहे जिसमें चित समा जाए हमारे चित को चुरा ले हमारे चित को ही अपने में मिला के समाहित कर ले अर्थात चित मिट जाए ऐसी सत्ता केवल प्रभु है। प्रकृति में तो चित अनंत गुणा विस्तृत हो जाता है। तो चैत चहत चित चोर को जानिए जब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा इस जीव को जगा हुआ तब जानना चाहिए जब संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो जाए अन्यथा कहीं न कहीं वो सोया अवश्य अचेत अवश्य है। और जागा हुआ चित्त की पहचान क्या है कि वो केवल चित्त चोर को चाहे केवल भगवान को चाहे। तो चेत चहत चित्त चोर को जो चित्त चोर को चाहता है वो चेला है वो चतुर है और वास्तव में वास्तविकता का जानकार है। तो चेला चतुर सुजान बहुत ही हम चतुर हो सुजान हो लेकिन कोई सदगुरु नहीं मिला तो सब व्यर्थ आगे मार्ग कौन बताएगा। तो चित के मिले न चौधरी भई चित में गलतान यदि चित के चौधरी इस चित के विशेषज्ञ सदगुरु सने सने चित को सब ओर से समेट के ईश्वर पथ पर लगाने वाले महापुरुष नहीं मिले तो भाई चित में गलतान चित में गलानी बनी ही रहती है जबकि उसके वैराग्य में कोई कमी नहीं। तो भला वो सदगुरु की शरण भी मिल गई तब वो क्या करेगा उसने किया क्या। तो भला उस चतुर ने कौन सी चतुराई कर डाली। तो चतुर क्या करी चतुर ने चतुराई उस चतुर कौन सी चतुराई किया उस चतुर ने कैसी चतुराई की। तो हमारा चित चेत चकोर किया आपन चित चांदन चमकाई जो सदगुरु है उनके चित्त में के लिए वो चेता और अपने चित्त को चकोर बना लिया। कबीर गुरुमुख चंद्रमा सेवक बने चकोर आठ पहर निरखत रहे गुरु चरणन की और अपने चित को चेताया और चकोर बना दिया। हमारा चित चेत चकोर किया मेरे उस सदगुरु के चित्त के लिए चेता और चकोर बना लिया, और उसका परिणाम क्या निकला कि आपन चित्त चांदन चमकाई। जो गुरु के अंदर गुरुत्व है वो अपने चित्त में प्रकाशित कर लिया, तो भला वो प्रकाश कैसे आया, उसके आने का प्रकार क्या है? तो कहते हैं अचानक चक चांद अचानक चंद चढ़ा, चंदा की चमक चित पर छाई। चकाचौंध करता हुआ अनायास ही उसमें प्रकाश परिस्फुटित हो गया। महाराज की शरण में आए तो ढाई महीना तक तो गुम सुम हम थे, जबकि भजन सब बता दिया था। अनायास अनुभव जागृत हो गए, हमने सोचा रोग हो गया। तो हमने महाराज से पूछा, महाराज जी पूरा शरीर एक एक सूत पर तड़ 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 फरक रहा है और कई बात बताया, क्या है, कोई बीमारी तो नहीं होगी? बोले बेटा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई शुरू हो गई, राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मरी और राम का राज्य अभिषेक हुई, भवबंधन से निवृत्ति हुई, तब्बे छुटकारा हुई, रस्ते में कभी नहीं रुकेगा, भजन जागृत हो गया, अनायास जागृत हो गया। तो चक चान अचानक चकाचौंध करता हुआ अचानक चंद चढ़ा, चंद चढ़ा चंदा की चमक चित पर छाई। इसलिए क्षीण आभा चढ़ गई चित पर, वो चमक चित के ऊपर छा गई, अर्थात अनुभव जागृत हो गया। और उस छाई तो कहां तक छाई, उसका परिणाम क्या निकला? तो चंदा चहूं और चकोर चला, चित चेतन में गिर दिखाई। फिर वो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां ता देख धरे धनुबाना। चंदा चहूं और बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहू, नरक जात धो काही। इसी आशय को तुलसी प्रगट करते हैं, न तो स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया, न नरक नरक के रूप में रह गया जिससे कि हम भयभीत हों, और ने वैकुंठ वैकुंठ के रूप में रह गया जिसकी हम कामना करें। तो चंदा चहूं और जहां तहां देख धरे धनु बाना, जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव को खड़ा पाया। तो चंदा चहूं और, लेकिन बाहर ही तो दिखाई दे रहा, हम तो अलग खड़े देखने वाले, ये प्राप्ति नहीं। इसलिए चकोर चला, रास्ता शेष है, आगे चलना बाकी है। और आगे चल के कहां पहुंचा? तो चित्त चेतन में गिर दिखाई। जो परम चेतन शाश्वत सत्य परमात्मा है, परम चेतन परमात्मा है, उस प्रभु में गिर दिखाई, उसी में अकूद गया, उसी में सराबोर हो गया। धरणी पर आया, जब उसमें गिरदी खाई गया, उसके बाद संत की रहनी किस प्रकार? धरणी पर आया, फिर उसकी स्थिति शरीर में उतर आई। मुवे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में करे आशा। कबीर कहता मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा करो राम राम, जरूर वो गुरु स्वार्थी है, कोई स्वार्थ उनका छिपा होगा, झाड़ू लगवाना चाहते होंगे। अवधु जीवत में करे आशा, और यदि जीयत मन बस हुआ नहीं तो पुण्य देवे बहुत त्रासा। जहां आशा तहां बासा, मन का यही तमाशा। यदि मन जिंदा है तो जैसी जैसी आशाओं फंसा वहां अब तुम्हारा पुनः जन्म होगा, वहां कलेवर बदलना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, जब मिलेगी जीते जी। तो धरणी पर आया, जब चंद उस प्रकाश स्वरूप में चेतन में गिरदी खा गया, छलांग लगा ली, उसके बाद में क्या हुआ? शरीर रूपी पृथ्वी में वो स्थिति उतर आई, धरणी पर आया, चमक में खो दई काया, अपना अस्तित्व को उसने मिटा दिया। काया का जो कारण चित्त था वो उसमें समाहित हो गया, और चला गया चित्त चोर चतुर जब तक चलने नहीं पाया। और ये स्थिति दिलाकर वो चित्त चोर भी चला गया अलग, अब कोई प्रभु बचा नहीं जिसको हम खोजें। और ये स्थिति ऐसी जिसके आगे फिर चतुर चलने नहीं पाया। ईश्वर प्राप्ति में कुछ दूरी ऐसी भी है जहां साधक के बस की नहीं है, वहां भगवान ही घुमा फिरा के दिखा सुना के बोध करा देते। अब स्वयं उसमें दृष्टि बन के प्रसारित हो जाते हैं, सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं, नहीं मानोगे तो मना लेंगे, न नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, वो अनुभव गम्य है, वो अचिंत्य है, अगोचर, इसलिए अनुभव गम्य है। वो स्वयं ही करुणा करके जिसे जता दे, इसलिए चतुर जब तक चलने नहीं पाया। अंतिम कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ साधक नहीं चल पाता, भगवान ही अपने घुमा फिरा के अपना बोध करा देते। ये था इसका मॉडलिंग, सूक्ष्म स्वरूप पूरे भजन का सारांश। अब है लावनी।
लावनी सुन बारह मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी। लावनी सुन बारह मासी,
जिससे जन्म और मृत्यु का बंधन सदा सदा के लिए कट जाए, उस लावनी को सुनो जो बारहमासी। भजन सीजनल नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं हम त्रिकाल संध्या करते हैं, ये बड़ा धोखा है। यदि जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष चाहते हो तो जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जागत में सुमिरन, सोवत में लो लगा लो और सूरत की डोरी लगी रहे, क्रम ने टूटने पाए। पूज्य महाराज जी कहें देखो, नाम रूप लीला धाम प्रार्थना कहीं न कहीं मन को लगाए रखो, हर समय लगाए रखो। यदि तुम भजन से छुट्टी दोगे तो मन माया में जगेगा। मन एक ऐसा यंत्र है, कभी छुट्टी लेता ही नहीं, इसलिए हर समय लगाए रखो। इसी का नाम है लावनी। ये हमें लाना है। ऐसा नहीं कि जाड़े में भजन बढ़िया होता है तो गर्मी में नहीं होता है, ये गलत है। सुबह शाम आँख मूंद लिया, दिन भर गटर मस्ती, ये गलत है। तो लावनी सुन बारह मासी, ये अहर्निश बारह मासी होनी चाहिए। इसका परिणाम, कटे जैसे जन्म मरण फांसी, उससे जन्म और मृत्यु की फांसी कट जाएगी। लावनी सुन बारह मासी, ये करना क्या, चेत में चिंता यह कीजे, किए तन घड़ी घड़ी छीजे। जहां चेत हो जाए, समझ काम कर जाए, तो पहला चिंता ये करो कि ये शरीर प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है। कल आंखों के सामने जन्मे थे लड़के, वो जवान है, कुछ के बाल पक गए, और जो यहाँ के गौरवशाली व्यक्ति थे उनको कईयों को चिता में जलते देखा जा रहा है आए दिन। मासूम बच्चे चले गए, जरूरी है कि 60 साल के होके मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं, पल भर का ठिकाना नहीं। एक बार युधिष्ठिर ने घोषणा कर दी राज्याभिषेक के पश्चात कि सज्जनों, जनपद के नागरिकों, आपके सुख दुख में मैं सदा ही भागीदार रहूंगा, वो मेरा दुख है। तो एक ऐसा घंटा टंगा हुआ था कि राजा से यदि भूल हो तो कोई भी बजा सकता है। भीम सभा से उठ गया, जाके लगा पीटने, तो तुरंत अर्जुन ने अपो कवच पहन लिया, धनुष उठा लिया, बोले कौन है सिर फिरा जो घंटा बजा रहा है। युधिष्ठिर ऐसा नरेश भूतों ने भविष्यति, भला इनसे भी कभी भूल हो सकती है, इतने धर्मात्मा नरेश के, धर्म के पीछे अपने प्राण भी न्योछावर करने वाला नरेश। जाके देखा कोई खड़ियंत्र तो नहीं, उसने धनुष उठा लिया, जाके देखा तो भीम पीट रहा था। तो बोले भैया भीम, राजा से क्या गलती हो गई? तो बोले ये कहते हैं मैं सदा ही तुम्हारे सुख दुख में भागीदार हूं, क्या ये राजा कल की गारंटी दे सकते? 18 अक्षरणी जन समूह की नदी बहा के तो आके गद्दी में बैठे, अपने ही स्वजन समुदाय और मासूम बच्चों को फूंक के आ रहे हैं और कहते हैं मैं सदा ही रहूंगा, क्या ये कल की गारंटी दे सकते? एक घड़ी युधिष्ठिर ने विचार किया, बोले भाई मुझसे वास्तव में भूल हुई, मैं कल की गारंटी नहीं दे सकता। और हुआ भी वही, एक दिन लगा झटका कि कृष्ण ने शरीर त्यागा, सठ सिंहासन से उठे और हिमालय का रास्ता पकड़ लिया। सने सने सब भाई एक दूसरे से बोले भी नहीं, चढ़ते गए सब स्वाहा हो गए। जहां चेत, महापुरुष का कहना है कि जहां चेत हो जिस किसी को चेत हो तो पहला विचार ये करो कि शरीर क्षण भंग है।
चेत में चिंता यह है कीजे,
कौन सी,
कि ये तन घड़ी घड़ी छीजे,
हर क्षण हर पल ये क्षीण होता जा रहा, परिवर्तित होता चला जा रहा है।
इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार,
इससे जरा विचार तो करो क्या संसार सत्य है। भोगता है संसार एक भोग्य सामग्री है हमारी, ये घर द्वार हमारा भोग है, ये उत्तम व्यवस्था हमारा भोग है, ये जुटाया हुआ सम्मान हमारा भोग है,
जो कुछ है संसार, जो कुछ है भोग्य सामग्री है, हम है भोगता। जब भोगता ही काल के गाल में सिमटता चला जा रहा है तो भला भोजन कब सकती,
क्या सार वस्तु क्या है संसार।
काल जो बैठा मेड़ियां आज मसाने डीट, किलो में काई लग गई, क्या ये भोग्य सामग्री सत्य है। तो यदि झूठ है तो सच है क्या,
तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। सत्य वस्तु परम सत्य केवल आत्मा है। महाराज को ये उतरा था आकाशवाणी से, 5000 वर्ष पूर्व गीता में उतरा था अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व तो नहीं है, भूतादिकों के संपूर्ण शरीर तो नाशवान है, आत्मा सत्य है। अव्यक्तो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष्येव च, नित्य है सर्वगत स्थानो रचलो यम सनातन। इसको न तो शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती है, ने वायु सुखा सकता है, ने आकाश विलय कर सकता है, ये नित्य सनातन शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। इस यही आवाज आई महाराज में, पढ़े लिखे तो थे नहीं, कि सत्य वस्तु है आत्मा, आत्मा सत्य, मिथ्या जगत पसार, और नश्वर है जगत का विस्तार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजे बात विचार। क्या है झूठ क्या है सच, इसका विश्लेषण करके समझ के उस पर आरूढ़ हो जाओ, इसका जो विवेक करो, इस बात को विचार लो।
फिर क्या मथुरायो काशी, लावनी सुन बारह मासी,
क्या और कल्याण के लिए क्या मथुरा घूमते हो क्या काशी, इससे कभी कल्याण नहीं होगा, उससे पुण्य वृद्धि होती है, पुरुषार्थ बढ़ता है, कल्याण तब संभव है। बारो मासी लो लावनी है आपको, ये कार्य आपको स्वयं करना है। पार्वती को उन्होंने कहा कि शंकर जी का मिलना बड़ा कठिन है, वो बड़े निष्ठुर है, वो तो हजारों वर्ष समाधि लगा लेते हैं, तुम अकारण श्रम करते हो, चलो विष्णु से ब्याह करा दे। तो पार्वती ने एक ही उत्तर दिया, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तो रहु कुमारी, करोड़ करोड़ जन्म तक मेरी रगड़ है, अनवृत अहर निश यही रगड़ है, इसी का नाम है लावनी की लो, हमें लगाना ही लगाना है, हमें लो लानी है, लावनी है माने उसे प्रकट करना है, ले आना है, ऐसी लगन जो बारो मासी हो, इससे जन्म मृत्यु का भवबंधन कट जाएगा। अगले पद में कहते हैं, अभी तुम्हारे पास समय है,
वैशाख में वक्त तूने पाया, यहां कोई रहन नहीं आया।
वैशाख दूसरे महीने में कहते हैं, तुम्हारे पास समय है, जब चेत हो गया, सतस्पद विचार हो गया, तो अभी तुम्हारे पास समय है, समय का सदुपयोग करो, और चाहो कि इस समय में भी हम कुछ गटर मस्ती में काट लें, तो कहते हैं यहां कोई नहीं टिक पाया,
यहां कोई रहन नहीं आया।
तो गए कहां,
काल ने सब ही को खाया, कि ये सब झूठी है माया,
सब काल के गाल में समेटते चले जा रहे हैं, सबको खा डाला, ये माया वास्तव में झूठी है। सोई पुर पाटन बहुरी ने देखा आई, लौट के किसी ने नहीं बताया कि हमारे क्या हुआ, इसलिए करें क्या उपाय,
तो भोग लोक पर लोक का, कि सब ही त्यागे राग रहे नैन की कामना ताही कहे वैराग। इसके लिए तुम एक काम करो, सब काम करो लेकिन राग का त्याग। बारामासी में गुरुदेव की वाणी है, मन जेठ में जतन यही करना भला कौन सा, कि मन इंद्रिय विषयों से परिहरना अर्थात संयमित करो, सर्व द्वाराणी संयम में संयम करो। और संयम क्या हम अपने माथे कर लेंगे, तो कहते हैं नहीं, लीजिए संतों का सरना। सब संत आदरणीय है लेकिन उनमें जो सर्वोपरि महत्व है वो सदगुरु का। तो श्रद्धा कर गुरु वेद में कर मन का समाधान, कर्म या कर्म के साधन त्यागे सहो मान अपमान, जगत से रहना नीते उदासी। तो संतों की शरण में जाना है और इसके पश्चात श्रद्धा करो गुरु और गुरु के वाक्यों में। गुरोर वाक्यम सत गेयम न गेयम, शास्त्र कोटि भी करोड़ शास्त्र व्यर्थ है, कभी अनुकरणीय नहीं है। कब? जब गुरु का एक वाक्य मिल जाए तब, और तब तक आदरणीय है सब। तो श्रद्धा कर गुरु, और गुरु के हृदय से मिलने वाले जो वेद है उनकी जो उपदेश आ रहा धारा प्रवाहित हो रहा उसमें मन का समाधान करो। उसमें मन दहने पाए नहीं भागने पाए, मन का कर समाधान। कर्म अकर्म के साधन त्यागो, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य इसको छोड़ भूल जाओ। सहो मान अपमान, मान अपमान सहन करो, क्योंकि ईश्वर पथ में जब साधक लगता है, कोई कहता जोगी, कोई कहता भोगी, कोई कहता स्मगलर है, कपड़ा पहन लो तो बोले देखो ना विध्वन के सिंगार न बीना, नंगे घूमो तो देखो ना पशु की तरह नंगा घूम रहा है, देखो ना पता नहीं कौन कौन टेरी का टेरीलीन वस्त्र हो गए, इनके शर्म नहीं आवत। भैया मोटाई है, मनमुखी है, कुछ इनको समाज कहेगी। तो सहो मान अपमान, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। आदर हो आदर में प्रसन्न मत हो, निरादर में क्षोभ न हो, और फिर विचरो पृथ्वी में वो संत सदा सुखी रहते हैं। तो सहो मान अपमान और जगत से रहना नित्य उदासी। सदगुरु में श्रद्धा करके लग जाओ, मान अपमान सहन करो, नित्य उदास रहो, क्योंकि जगत घूम फिर के तुम्हारे सामने आएगा, उसे सदा सतर्क रहो उदास रहो। लावनी सुन बारे मासी, हमें लो लानी है, इसे जागृत करना लगानी है, और ऐसी नहीं कि सुबह शाम भजन, हर समय चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद आया करे। जैसे किसी का जेवर खो गया हो 10 लाख का, तो फिर वो जैसे छटपटाता है ऐसे ही छटपटाया करो। अषाढ़ में सत संगति करना, वहां तू पावे सब मर्मा। अषाढ़ सदगुरु में भी श्रद्धा हो गई, मान अपमान सहन की क्षमता भी आ गई, अब सत्संग करना। समझा था तब तो हम भजन में लगे, अब कौन सा सत्संग बाकी। एक सत्संग ये जो वाणी से मिलता है ये उसका एक भाग है, नितांत आवश्यक है। दूसरा सत्संग है सतत जब भजन में प्रवृत्त होते हैं, तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, आत्मा ही परम सत्य है। मन को सब ओर से समेट कर इस सत्य की संगत में लगा दो, सदगुरु के स्वरूप को हृदय में देखो, श्वास को देखो, और मन को सब ओर से समेट के श्वास में प्रवाहित कर दो। यूं जो सत्संग सत्य की संगत में हम डूबते जाएंगे, एक सत्संग होता है वाणी से और दूसरा सत्संग होता है चिंतन ध्यान और समाधि के द्वारा सिद्ध होता है। वो सत्य की संगत में हमारा मन का व्यापार शांत हो जाए, संगत में हमारा सूरत लग जाए। तो अषाढ़ में सत्संगत करना, उस सत्संग से लाभ, वहां तू पावे सब मर्मा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया, अत्यंत गोपनीय जो एक छिपा हुआ है, वो भी भेद तुम पा जाओगे, वहां तुम पावे सब मर्मा, ये अनुभव में आएगा। तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। वहां तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, बोले अरे अभी तुमने कुछ भी नहीं किया था, थोड़ा ही साधन किया उतने में इतना लाभ, ऐसा कुछ है भगवान के दरबार में। उत्साह बढ़ जाता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, जानने की इच्छा बढ़ जाती है, और तब लगे मोक्ष की आशा। इतना पापड़ बेलने के पश्चात मुक्ति अवश्यम भावी है, मुक्ति वास्तव में है, उसकी आशा बंध जाती कि नहीं ये अवश्य है, ये पद है, और भली प्रकार आशा स्थिर हो जाती है। वहां तब लगे मोक्ष की आशा, तो जिस मोक्ष की आशा लगती वो कैसी आशा है, तो परमानंद की प्राप्ति, अरुण रथ का नाश, ये इच्छा मन में रहे कहे मुमुक्षातासु। हाँ, तो भला मोक्ष की आशा जो लग जाती, मोक्ष है क्या, परमानंद उसकी प्राप्ति, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वो प्रभु प्रकृति से परे है और उसका निवास सबके हृदय देश में है, पर है इसलिए वो परम आत्मा कहलाता है। तो परमानंद, उस परम के आनंद की प्राप्ति अनुभूति, संपूर्ण अनर्थ का विनाश, जो बारंबार वो मलमूत्र पीप से सनी हुई अनंत योनियों का जो भ्रमण कराता है, ये अनर्थ के जो कारण है राग द्वेष काम क्रोध, इनका विनाश, ये इच्छा मन में रहे कहे मुमुक्षातासु। ऐसी इच्छा मन में जब धारण कर लेता है, वास्तव में वो मुमुक्षु है, वो मोक्ष का प्रत्याशी है, मोक्ष प्राप्ति का वो भी एक प्रत्याशी, सच्चा प्रत्याशी है। और आगे फिरे क्या मथुरा अवकाशी, दहने बाएं भटकने से ये प्राप्ति, जिसका नाम परमानंद है, ये प्राप्ति सम कभी नहीं है, इसलिए लो लगाओ, लो तुम्हें लाना ही लाना है, ऐसी लोह की अहर्निश बारो मास। भरत जब से घर छूट राम के खड़ाऊ मिले, तब से नंदी ग्राम में प्रवेश कर गए, आंखों में आंसू, जबान पर नाम और हृदय में स्वरूप था। कोई भी कार्य करता था तो खड़ाऊओं से पूछ के करता था, खड़ाऊ बोलती थी, कहीं काट की खड़ाऊ बोला करती क्या, टेलीफोन रहा का ख्याल ही खड़ाऊ है। प्रभु के चरणों में जिस जिस किसी पति की जान लौ लगी, सूरत उससे संबंधित जुड़ गई, तो सटासट आकाश बोलने लगता है। महाराज कहो, भगवान जब कृपा करते हैं तो इस पेड़ से, शून्य से, सर्वत्र से बोलते हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं, क्यों कि वो सर्वत्र हैं। तो श्रवण में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब होय तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। श्रावण में गुरु के प्रति समर्पण की दो तीन मास है, तो श्रावण शरणागत हो जाओ, अपने भरोसे मत भजन करो, समर्पित हो जाओ। अर्जुन मेरे आश्रित होकर समर्पित होकर लग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्म की चिंता छोड़, कि ये सही कि वो सही भूल जा, एकमात्र मेरी शरण हो जा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। तो कहते हैं श्रावण में शरणागत होना, किसकी, सदगुरु की, पैर सदगुरु के धो पीना। तो क्या ये पांव धोने से कुछ सब कुछ मिल जाएगा, जब शरणागत होके जब चरणों में लगी गए, जब अभ्यास इतना सूक्ष्म हुआ कि चरण हृदय में आए ध्यान में, तो उनके अंदर जो विभूति वो आपके हृदय में उतर आएगी, वो धुल गया, ये चिंतन से सुमरण से धुलेगा, जहाँ हृदय में आया तो उनमें जो विभूति पराग है वो उतर आएगा। पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब होए तोहरा सीना, जब हृदय निर्मल हुआ रंग तब रहनी का दीना, संतों की रहनी का रंग चढ़ने देंगे दीना, वो प्रदान कर देंगे। सदगुरु तो भला वो रंग है क्या, क्या प्रदान कर देंगे? तो तत्त्वमसी के अर्थ को तो ये करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा हो ये अविद्या नाश। तत्त्वम असि, वो परम तत्व तुम स्वयं हो, इसका अर्थ को तो ही करूं प्रकाश, तुम्हारे हृदय में सने सने इसको जागृत प्रकाशित करूंगा, एकदम नहीं हो जाओगे, इसका प्रकाश मिलने लगेगा, सने सने इसकी अनुभूति जागृत होने हो जाएगी, तो ही करूं प्रकाश, और उसके प्रभाव से तुम्हारा संशय शोक सदा के लिए मिट जाएगा, और होए अविद्या नाश, जो अविद्या सारे अनर्थों का कारण है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ताबस जीव पड़ा भव कूपा, जो भवकूप में गिराने वाली है उसका इसके प्रभाव से विनाश हो जाएगा। अगले पद में कहते हैं, फिर भी गुरु पर बल देते हैं, महीना भादों का आया भरम सब चीजे, भादों में बरसता है पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, सच पूछो तो पृथ्वी तृप्त हो जाती है, हरी भरी, हर पौधा काला हो जाता है, पूर्ण जवानी भरपूर रहती है। ठीक इसी प्रकार जब उस सदगुरु के चरण भी पकड़े, धुलाई हुआ रंग रहनी वाला जब मिलने लगा, तब ही भरपूरता है। तो महीना भादों का आया भरम सब चीजे, गुरु की भक्ति चित्त धार प्रेम रस पीजे, ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजे, और इस मानव तन को पाय सुफल कर लीजिए। भादों का महीना आया, जब भरपूरता आ गई तो भरम सब चीजें, तो भरम अपना समाप्त हो जाता है, लेकिन रास्ता शेष है, लक्ष्य प्राप्ति बाकी, इसलिए गुरु की भक्ति चित्त में धारण करो और प्रेम रस पीजिए। प्रेम ऐसा होता है, जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है मैं ना ही, प्रेम गली अति सांकड़ी ताबिच दो न समाई। प्रेम रस ऐसा पियो कि अपना अस्तित्व मिटा दो, उनके आश्रित हो जाओ, अपना शीर्ष चरणों में चढ़ा दो, वो क्या प्रदान करते हैं उतना ही तुम्हारा मस्तिष्क होना चाहिए, बस ये इस चीज का चढ़ाना है। प्रेम रस पीजे और ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजिए। हमें जरूर तो ईश्वर की और भक्ति गुरु की मानस में है। वाल्मीकि से भगवान राम ने पूछा, भगवान मैं कहाँ रहूं? तो बोले, आप कहाँ नहीं हो बताओ, हैं तो सर्वत्र लेकिन दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष रूप में कहाँ रहे? तो जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी शुभग शरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही है तुम कहाँ ग्रह रूरे। भगवान जिनकी कान कभी आपकी कथा अमृत सुनने से तृप्त नहीं होते, उनका हृदय आपका घर है। लोचन चातक जिनकर राखे, रहे दर्श जलधारी अभिलाखे, निधरे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, उनका हृदय आपका घर है। जिनके कपट दंभ माया नहीं है, उनका हृदय आपका घर है। तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, सर्व भाव सेवई सनमानी, सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बस हो, श्री रघुनंदन दो। और तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, आपसे भी गुरु को अधिक जानकर, हृदय में समझकर, संपूर्ण भाव से समर्पण के साथ भजते हैं, बदले में चाहते हैं केवल प्रभु भगवान उनके हृदय में आप निवास करें। यही आशय इस लाइन का है कि ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजिए, और इस मानव तन को पाए सफल कर लीजिए। क्यों? कि मानव तन की सफलता इसी में, केवल कुशलता पूर्वक भोग भोग के इठला के पौवा पर पी के जीवन बिताने में नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, तो विषय कितना बड़ा होता है, विषय की अंतिम सीमा कहाँ है? स्वर्ग, स्वर्ग भी एक विषय है। तो स्वर्ग स्वल्प वो भी चंद दिन का है, 7 स्टार होटल का 2 दिन का बैठकी है और कुछ नहीं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, परिणाम है दुखदायी। नर्तन पाए विषय मन दीना, पलटी सुधा सोई सठ बिखलीना। उस मूर्ख ने विष ले लिया। और आगे कहते हैं, स्तन को पाके जिसने अपना परलोक नहीं सुधार लिया, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अपना निजी परलोक नहीं सुधार लिया, किसी पर एहसान मत करो, अपनी भलाई देखो। वो जन्मांतरों में दुख पाता है, शिर धुन धुन के पछताता है, काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। यदि मनुष्य शरीर उपलब्ध है और अपना निजी ही सुधार नहीं कर लेता तो सब दोष उसी का। तो महापुरुष कहते हैं, जिस मानव तन को पाए सफल कर लीजिए। तो हम गुरु की भक्ति ईश्वर से भी अधिक तो करें, लेकिन गुरु कैसे? यहां से बनारस तक जाओ, आपको 10,000 गुरु मिल जाएंगे। सबके पास पर्याप्त सामग्री है मंत्र देने की। गुरु को, गुरु के लक्षण क्या है? तो ब्रह्मवेता वक्ता सुरत, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। ब्रह्मवेता, जो ब्रह्म स्थित हो, ब्रह्म से संयुक्त हो, वक्ता उसके विषय में प्रकट उपदेश कर सकते हैं और बता सकते हो, और सूरत बता के छोड़ नहीं देते। उस सूरत कहते हैं मन की दृष्टि को, उस मन को पकड़ के इस सूरत के पथ पर, साधन के पथ पर लगा सकते, चला सकते हो। ये गुरु के लक्षण है। और शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य के लक्षण क्या? तो मात्र मोक्ष की इच्छा रखे, दर्शन मोक्ष की इच्छा रखे, ताहि शिष्य पहचान। यही शिष्य की पहचान है। और फिर मोक्ष क्या है? होवे अमरापुर को बासी, लावनी सुन बारह मासी। वो अविनाशी पद कैवल्य धाम का वासी होता है। इसलिए लो लगाओ, लो हमें लानी है, लो हमें जागृत करके उसको ले आनी है। वो अवस्था लग जाओ, अवश्य भवबंधन छूट जाएंगे, जन्मरण का फंद कट जाएगा। ग्वार में करना यही उपाय, तत्त्वमसि श्रवणन मन लाए। क्वार वो कहते हैं दूषित, क्वारे कहते हैं काटने को। जब विकार ही मिट गए, हल्के हुए, तो करना यही उपाय। अब साधना बहुत आगे बढ़ गई है, सदगुरु के स्वरूप हृदय में जागृत हो गया है। तो अंतिम फिर मिलता क्या है? करना यही उपाय। तत्त्वम असि, वो तत्व मैं स्वयं हूं, मुझ में ओतप्रोत है। इसमें श्रवणन मन लाए, ये तुम्हें सुनाई पड़ेगा, तुम उसको श्रवण करो, उसमें मन लगाओ। तो जगत से मनन करो प्यारे, खुले जैसे अंदर के ताले। जुगत से, जुगत वेद जिमि पोई ही रामचरित वर्ताक, पहिरे सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। योग एक युक्ति है, उस युक्ति से अनर्गल कुछ भी कर गुजरना भजन नहीं। युक्ति हृदय देश में अनवरत आए दिन बदलती रहती है, बदल बदल के मिलता जाता है। तो जुगत से मनन करो प्यारे, खुले जैसे अंदर के ताले, हृदय के ताला खुल जाए, इसमें जो रुकावटें दूर हो जाए, मल आवरण विक्षेप मिट जाए। तो निध्यासन के अंत में, ताला जब खुल गया तब, खुला हुआ कब है? जब नी अध्यास, अध्यास माने भान, नी अध्यास माने किसी देह का गेह का भान, अध्यास समाप्त हो जाए, इसका नाम है निध्यासन। तो निध्यासन के अंत में, निध्यासन की अंतिम चोटी पर पहुंचने पर, आरंभ में नहीं, निध्यासन के अंत में, ऐसा होवे भान, ब्रह्म आत्मा एक लख, तब होय ब्रह्म को ज्ञान। जो है घट घट को बासी। ने अध्यास के परिपक्व अवस्था काल में अंत में एक साधना की निम्नतम सीमा होती, आरंभिक अवस्था अधिकतम सीमा होती, पराकाष्ठा। नहीं अध्यास तो हम भजन शुरू करते हैं उस दिन से प्रयत्नशील है, लेकिन उसके अंत में जब अध्यास सध जाए तब ऐसा हुए भान कैसा कि ब्रह्म आत्मा एक लख, जो ब्रह्म है वही आत्मा है, कोई भेद नहीं, तब हो ये ब्रह्म का ज्ञान। और भला वो ब्रह्म है कैसा, तो बोले वो हर घट में निवास करता है, जो है घट घट को वासी। लेकिन लो लगाओ, लो लाओ, लावनी है ये, आपको ले आना है, ये पकड़ आपको जागृत करना है, इसमें आपको टिकना है। सुन और वो भी बारो मासी अहरनिश, जागत में सुमिरन और सोवत में लो लाओ, कटे जैसे जन्म और मृत्यु का फंद कट जाए। तो ब्रह्मात्मा एक लग की अवस्था के पश्चात कार्तिक में कर्म सभी नासा, कार्तिक माने कर्मों का त्याग। तो हम कर्म नहीं करते, इससे त्याग कर्म पिंड नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्म आत्मा एक लखने की अवस्था में कर्म संस्कारों की रील कट जाती है। तो जो कर्मों का भी जहां त्याग का स्तर आया तब कर्म सभी नाशा। कब? ज्ञान जब युर में प्रकाशा, ईश्वरीय अनुभूति जब हृदय में प्रकाशित हो गई। ज्ञान कुछ याद करना नहीं है, मस्तिष्क को वृहद बनाना ज्ञान नहीं है, ज्ञान का दर्शन के साथ जो अनुभूति है उसका नाम ज्ञान है। भगवान कृष्ण का कहना है अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानम। तो आत्मा के आधिपत्य में निरंतर रमण और परम तत्व परमात्मा की ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति, ये तो है ज्ञान। और इसके विपरीत जो कुछ भी है सृष्टि में अज्ञान है। तो साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। तो कार्तिक में कर्म सभी नाशा, सारे कर्म नष्ट हो गए, अंतिम संस्कार भी मिट गया, ये कब संभव है? ज्ञान जब युर में प्रकाशा, जब हृदय में वो ईश्वर की अनुभूति का प्रकाश हुआ, ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई। और उस ज्ञान में मिला क्या? तब अपना आप रूप भाषा उसी काल खो तमाशा, अपना स्वरूप आभास भाषित हो गया। अब उसी का तमाशा लखो की रूप कैसा है उसको देखो, वो एक आश्चर्य है, तमाशा है, आश्चर्यजनक एक उपलब्धि है, उसी का लखो तमाशा। तो भला वो है कैसा? आर पार हमरो नहीं, नहीं देश काल से अंत, मैं ही अखंडित एक हूँ, सब वस्तु का तन, मैं ही चेतन अविनाशी। तो उसी का जो तमाशा देख रहा था, वो आश्चर्य जो देख रहा था, भला उसमें था क्या? आर पार हमरो नहीं, आदि अंत हमारा नहीं, देश काल से मेरा कोई बाधित नहीं, वो स्वरूप देश नहीं, देश काल से अंत, मैं ही अखंडित एक हूं, सब वस्तु का तंत, जो सत्य वस्तु है उसका तंत, उसका सार सर्वस्व मैं ही हूं, मैं ही चेतन अविनाशी। जिसको पाना था पाई लिया। उस वक्त क्या भजन पूजन भगवान ईश्वर माया होगी? इस पर अंतिम लाइन कहते हैं अगहन में ज्ञान अग्नि जागी, लोग शब्दाहन कहां लागी, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। भगवान कृष्ण कहते हैं नियत क्रम तो मालूम ही है, योग साधना की निश्चित विधि का नाम यज्ञ है और उसको चरितार्थ करना कर्म माने आराधना। संपूर्णता से आरंभ की हुई कर्म, लेशमात्र भी त्रुटि न रखकर आरंभ किया हुआ कर्म, उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि काम संकल्प वर्जिता, काम माने कामनाएं। और संकल्प वर्जिता, संकल्प का उतार चढ़ाव मन पर है। सच पूछो तो मन का ही दूसरा नाम संकल्प है। तो ये कर्म साधन चिंतन इतना उन्नत हो गया कि कामना और संकल्प से ऊपर उठा दिया, ये मन की विजेता अवस्था है। यहां संकल्प विकल्प की लहर शांत हो गई, मन ही तो बीच में रुकावट थी वही शांत हो गया। ता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उस वक्त हम जिसको जानना चाहते थे वो विदित हो जाता और उस ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर्माणम कर्म सदा सदा के लिए जल जाते हैं। जो दूषित थे वो और जो करना कर्तव्य था वो भी। तमाहु पंडितम बुधा, ऐसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया। वो पंडित है, वो पूर्ण ज्ञाता है, वो महापुरुष है। तो जब अपना आप रूप भाषित हो गया है, मैं ही चेतन अविनाशी वाली अवस्था आई, तो क्या हुआ संसार, क्या हुआ भगवान, इस पर कहते हैं। जब पाप समाप्त हुआ अगहन, तो ज्ञान अग्नि जागी, साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जो अनुभूति उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान योग का परिणाम, धर्मते विरति योग ते ज्ञाना, योग का परिणाम ज्ञान है। कर्म इतना उन्नत होगी साधना की, जहां काम और संकल्प शांत हुए तो ज्ञान अग्नि, उस वक्त ज्ञान अग्नि प्रकट होगी। अग्नियां बहुत सी हैं, विषयाग्नि, कामाग्नि, त्रेतापों की ज्वाला जो इस आत्मा को हनन करती है, अधोगति की ओर ले जाती है, हमारे सत्कर्मों को जलाती है। लेकिन योगाग्नि, ज्ञानाग्नि, संयमाग्नि हमें उत्थान स्वरूप की ओर ले जाती है, जिसकी पराकाष्ठा है ज्ञानाग्नि। जहां ज्ञानाग्नि जगी तो लोग सब दाहन कहां लागी, सारा लोक लोकांतर जलने लगा। फूंक दिए ब्रह्मा अरु विष्णु, फूंक दिए राम अरु कृष्ण, ब्रह्मा और विष्णु फूंक दिए। ब्रह्मा ईश्वरीय संचार जब बुद्धि में हो जाता है, उस दिन से ब्रह्म विद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विदुरियान, ब्रह्म विदुरिष्ट, ब्रह्मा के चार मुख्य, अंतिम ब्रह्मा की अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित हो जाए बुद्धि में, वो भी समाप्त। विष्णु जो पालन करता था योगक्षेमम वाहम्यम, वो भी खत्म। और दग्ध भय राम यरु कृष्णु, अनुभवों की आवश्यकता खत्म हुई। विज्ञान रूपी राम, तहां नहीं पुनि विज्ञान बिहाना, आत्मा से रथी था उसकी आवश्यकता खत्म हुई। कृष्णो फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम यरु कृष्णो। कृष्ण एक सदगुरु थे, हृदय से जाग काया से संचारित था, उस संचार की अब आवश्यकता शेष हुई। तो जलत जलत ऐसी जली, जाको आरन पार, ईश्वर जीव ब्रह्म यरु माया, फूंक दियो संसार, बिना ईंधन के प्रकाशी। इतनी जली ऐसी व्यापक उठी जली ज्ञानाग्नि, ईश्वर जल गया। उस ज्ञान में अनुभूति में ईश्वर की अलग अलग उपस्थिति समाप्त हो गई, ब्रह्म अलग नहीं रह गया, क्योंकि मैं ही चेतन अविनाशी हूं ना। ईश्वर जीव, जीव नहीं रह गया, ब्रह्म और माया नहीं रह गई, और फूंक दियो संसार, जगत को फूंक दिया। उस ज्ञान अग्नि में जगत सदा सदा के लिए समाहित हो गया। ये फूंकने पर विविध तरीके से महापुरुषों ने प्रकाश डाला है। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुका है, समुद्र सूख गया। यहां कहते हैं जगत फूंक दिया, एक ही बात है। जे ही जाने जग जाई हिराई, उन्हें जान पर जानते ही जगत खो गया। खो जाना, फूंक देना, सूख जाना पर्यायवाची शब्द है। इस समझाने के एक संबोधन उदाहरण मात्र है और कुछ नहीं। और बिना ईंधन के प्रकाश, उसमें कोई ईंधन नहीं, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, वो सहज प्रकाश स्वरूप है। वो ईश्वरीय एक ज्योति है, परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो अपना ही स्वरूप है, केवल रूप। और जिसको पाना था पा लिया, तब पुष में पूर्ण आपे आप। अब सब फूंकी गया, जगत रह ही नहीं गया, तब रहा क्या? तब संत की रहनी पर प्रकाश डालते हैं अगले दो तीन मास में कि पुष में पूर्ण आपे आप, तहां पर नहीं पुण्य रूपाप, कहो फिर जपूं कौन का जाप, मिटा सब जन्म मरण संताप। पुष में जब वो सब संसार ही जल गया, ज्ञाना अग्नि में किसी का अस्तित्व तो नहीं रह गया, तब पूर्ण आपे आप वहां पर ने पुण्य पूर्णत्व की ओर ले जाने वाला पुण्य कर्म, पतन की ओर ले जाने वाला पाप नहीं है, नहीं पुण्य और पाप। कहो अब जपूं कौन का जाप, किसका जाप करूं? सब तो समाहित हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कृष्ण की जो अवस्थाएं थी वो भी पीछे ज्ञाना अग्नि में समाहित हो गई। मिटा सब जन्म मरण संताप, जन्म मृत्यु का संताप मिट गया। ज्ञाता ज्ञानन गेय कछु, वहां कोई ज्ञाता नहीं है, जानने वाला ज्ञानी कोई नहीं, ज्ञान नहीं, उसकी विधि नहीं, ज्ञे नहीं, प्राप्त होने योग्य सत्ता नहीं, सत्ता नहीं है। ध्याता ध्यानन ध्येय, अब कोई ध्येय नहीं बचा, ध्याता नहीं है, ध्यान का कोई केंद्र नहीं है। मम निज शुद्ध स्वरूप में उपाधेय नहीं है, मेरे निज शुद्ध स्वरूप में उपाधेय अब अर्जित करने लायक, जागृत करने लायक उपाधेय। उपाधेय माने क्या होता है? उत्पन्न करना। और हे दृष्ट दृश्य और संयोग हे यह हेतु, दृष्ट माने आत्मा, दृश्य माने जगत, इनका संयोग ही है माने नष्ट करने योग्य है, यही हे का हेतु है। तो दृष्ट दृश्य संयोग नहीं, विनाश करने लायक कोई वस्तु नहीं, तो करूं फिर किसकी तलाशी, अब मैं भला किसकी तलाश करूं? माघ में मिटी मिलन की भूख, जब कोई बचा है, अब जिससे मिलना था मिल गया, आगे मिले तो किससे? माघ में अब तृप्ति हो गई, अब आत्मा आज तृप्त है। माघ में मिटी मिलन की भूख, तहां पर नहीं आशिक माशुक, तो इश्क फिर किसका होवे, वृथा वक्त तू क्यों खोवे। अब मिलने की भूख ही मिट गई, अब किसी के लिए आत्मा सदा तृप्त है, स्थित है, वहां न कोई आशिक है न कोई मासूक है, न प्रेमी है न कोई प्रेमास्पद है, फिर इश्क किससे हो? क्यों व्यर्थ समय नष्ट करते हो? जब ये संभव है तो फिर समय क्यों नष्ट करते हो? वृथा तुम वक्त क्यों खोवे? तो व्यापक परमानंद में नहीं आशिक माशोक, लक्ष्य रूप में मार निशाना, क्यों व्रथा बिलोवे थुक करावे, क्यों जग में हाशी। व्यापक है, परम आनंद है, शाश्वत सहज आनंद है, उसमें न कोई आशिक है न माशूक है, न प्रेमी है न प्रेमास्पद है, ये लक्ष्य है सबका, यही गोल है इस हर जीवात्मा का, इस लक्ष्य में निशाना मारो, लगन लगाओ। क्यों वृथा बिलोवे थूक, क्या रात दिन शास्त्र में लिखा, शास्त्र में लिखा, क्या बकवास करते हो, इसमें निशाना मारो। तो व्यापक परमानंद में नहीं आशिक माशोक, ये लक्ष्य, लक्ष्य रूप में मार निशाना, इस पर चोट करो, इस पे निशाना साधो, चित्त की वृत्तियों को समेट के इसको अपना उद्देश्य बना लो। क्यों वृथा बिलोवे थूक, क्यों व्यर्थ की बकवास करता है, और ये बकवास करके जगत में हंसी का पात्र क्यों होता है? क्यों करावे जग में हंसी, लावणी सुन बारे मासी, अंत में निर्णय देते हैं कि इसमें क्या मिला। तो वसंत ऋतु फाल्गुन में आवे, खेल यह प्रारब्ध रचवावे, इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, खेलते भर भर के झोली। वसंत ऋतु। अर्जुन का एक नाम था फाल्गुनी, तो पूछा उत्तर ने कि आपका ये फाल्गुनी नाम 10 में से एक है, इसका मतलब कि बोले मेरा जन्म हुआ था तो मेरा रंग श्यामला था, तो इतना मैं सुंदर लगता था कि माताजी ने सदाबहार नाम ही रख दिया हमारा, वसंत, सदा खिला हुआ। तो वसंत ऋतु फाल्गुन में आवे, जब व्यापक परमानंद की जहां स्थिति मिल गई, तब अब परमानंद प्राप्त महापुरुष की क्या रहनी है, इस पर प्रकाश डालते हैं। वसंत ऋतु सदाबहार, ये वसंत आती जाती घटती बढ़ती है, लेकिन ये प्राप्ति के पश्चात उतार चढ़ाव उसमें नहीं है, ये तो एक उदाहरण मात्र है। और खेल यह प्रारब्ध रचवावे, ये प्राप्ति वाला खेल प्रारब्ध रचवाते हैं, सहसा सब रास्ता तय कर लोगे, 2-3-4 भूमिका डांक जाओगे धनाधन घर में रहते हुए। कारण गीता के अनुसार, पूज्य गुरु महाराज के अनुसार, ईश्वर पद की आधी दूरी सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही तय होती है। उसके बाद वाला जब पीरियड आता है तो भगवान बांह पकड़ के उठा खींच लेते, कोई साधु होता नहीं वो बना देते। महाराज के हो कल्पना नहीं थी, भगवान मोके जबरदस्ती घर पर छुड़वा दी। तो खेल ये है प्रारब्ध रचवावे, प्रारब्ध पूर्वकृत कर्तव्य जो हमारा संग्रह है वो इसमें प्रवेश, पूर्ण विरक्ति और तत्व तक की लौ लग जाए, ऐसी प्रेरणा प्रारब्ध की भी उसमें हाथ है। महाराज के हो कल्पना नहीं थी कि हम घर छोड़ेंगे, भगवान मोके छुड़ा दिए, 3 बार आकाशवाणी दिया, ये गुरु महाराज ये तुम्हारा रास्ता। बाद में हमको चिंता होगी कि हमको क्यों भगवान ने इतनी सहायता किया, वो रात दिन क्यों कृपालु है, तो पिछले 7 जन्म का विवरण दिखा के बताया कि थोड़ा सा तुम्हारा बाकी था। तो खेल ये है प्रारब्ध रचवावे, इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, खेलते भर भर के झोली। इत्र फाल्गुन नहीं, इत्र लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, तो कि इत्र गुलाल रोरी ज्ञान की है, वो अनुभूति की है, और खेलते भर भर के झोली, वो ज्ञानी होके चुप नहीं बैठा है, वो ज्ञानी होके प्रदान करता है, उस ज्ञान को फेंकता झोली भर भर के, खेलते भर भर के झोली, झोली की झोली लुटाता चला जा रहा है। एक श्लोक है महापुरुषों की प्राप्ति के पश्चात का कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। वो पूर्ण है, पूरे में से पूरा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में पूर्ण है, पूरे में से पूरा का पूरा दान कर देने के पश्चात भी शेष पूर्ण है। तो खेलते भर भर के झोली, इत्र गुलाल ज्ञान जो ईश्वरीय खुशबू है, ईश्वरीय आभा रंग चढ़ाने का जो तरीका है वो ज्ञान का है। इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, खेलते भर भर के झोरी, वो लुटाता रहता है, बरसाता रहता है। और होली अविद्या फूंक के, अविद्या रूपी होली को सदा सदा के लिए समाप्त कर। हो गए गुप्त आनंद गोपनीय आनंद, सो सुख जाने मने और उकाना, नहीं रसना पई जाई बखाना, उस गोपनीय आनंद मैं हो गए गुप्त आनंद, समझे कोई सुघड़ विवेकी। अच्छा इस पर प्रवेश सुघड़ विवेकी, सदा हुआ विवेकी पुरुष ही समझे, क्या समझे मति बंद, जगत की धूल उड़ी खासी, लावनी सुन बारे मासी, जगत की धूल उड़ गई, नाम ले तो बहु सिंधु सुखाई, सूख गया या जगत की धूल उड़ गई, नाव बिच नदिया डूबी जाए, नियम एक नौका है उसका भली प्रकार नियम पालन किया जाए तो परिपक्व अवस्था में भव सरिता ही उसके अंतराल में डूब गई। और लावनी सुन बारे मासी, लो लगाओ भजन सुबह शाम नहीं, सुबह शाम 10 मिनट बैठकर समय दो और चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे तो सोने में सुहागा है। आस्ते आस्ते यही अनवरत अवस्था लाइन पकड़ लेगा इस दिन।